चलिए एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हमेशा से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। आंख जैसी जटिल, मतलब इतनी नाजुक और अद्भुत चीज आखिर बनी कैसे?
सही बात है।
क्या ये किसी दिव्य शक्ति का एक झटके में किया गया चमत्कार है, या इसके बनने की कहानी कुछ और है जो हमें जिंदगी के विकास के बारे में ही कुछ गहरा सिखाती है?
और ये सवाल वाकई कमाल का है,
हाँ
क्योंकि माइकल लैंड और डैन एरिक निल्सन जैसे वैज्ञानिकों के काम पर आधारित हमारे स्रोत एक हैरान करने वाली बात बताते हैं।
वो कहते हैं कि आंख कोई एक बार का आविष्कार नहीं है।
एक बार का नहीं है,
नहीं, ये एक ऐसा समाधान है जिसे प्रकृति ने एक या दो बार नहीं, बल्कि लगभग 40 से 60 अलग अलग मौकों पर पूरी तरह स्वतंत्र रूप से खुद ब खुद खोज निकाला है।
1 मिनट, 40 से 60 बार?
40 से 60 बार, मतलब ये कोई एक रेसिपी नहीं है जिसे सबने कॉपी कर लिया हो।
बिल्कुल नहीं।
ये तो ऐसा है जैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में बिना बात किए 40 शेफ ने एक ही जैसी शानदार डिश बना लियो। तो फिर ये कहानी एक पूरी बनी बनाई आग से तो शुरू नहीं होती होगी?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी शुरू होती है सबसे बुनियादी चीजों से,
जैसे कि
फिजिक्स और बायोलॉजी।
फिजिक्स और बायोलॉजी। अच्छा,
हाँ, पहली है रोशनी की भौतिकी। देखिए, देखने का मतलब ही है रोशनी से जानकारी निकालना।
सही है।
और दूसरा है बायोलॉजी का सबसे छोटा हीरो, प्रकाश को महसूस करने वाली सिर्फ एक कोशिका।
सिर्फ एक कोशिका?
हाँ, जिसे हम फोटोरिसेप्टर कहते हैं। बस यहीं से शुरुआत हुई।
यानी बस एक कोशिका जो अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकती थी,
बस इतना ही।
जैसे एक लाइट सेंसर जो बस ऑन या ऑफ बता सकता है।
लेकिन एक अकेले सेंसर से लेकर एक हाई डेफिनेशन कैमरे तक का सफर ये कैसे तय हुआ?
और ये सफर बड़ी बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे फायदेमंद कदमों में तय हुआ।
छोटे कदमों में? हाँ, सोचिए, पहला कदम था इन प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का एक जगह इकट्ठा होकर एक समतल पैच बनाना।
ओके, एक पैच।
अब जीव को बस इतना पता चलता था कि उसके ऊपर रोशनी है या नहीं, कोई खास फायदा नहीं।
हाँ, इससे ये तो पता नहीं चलेगा कि शिकारी कहाँ से आ रहा है।
बिल्कुल। लेकिन फिर एक मामूली सा बदलाव आया।
क्या?
ये समतल पैच धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगा और एक छोटे से कप या प्याले का आकार ले लिया।
एक छोटा सा गड्ढा बन गया।
हाँ, ये सुनने में बहुत छोटा बदलाव लगता है, लेकिन इसका नतीजा जबरदस्त था।
कैसे? उस छोटे से गड्ढे से क्या फर्क पड़ा?
बहुत बड़ा। कल्पना कीजिए, आप खुले मैदान में खड़े हैं और सूरज ठीक ऊपर है। आप हथेली सीधी रखेंगे तो बस गर्मी महसूस होगी। लेकिन जैसे ही आप हथेली को मोड़कर एक कप जैसा बना लेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि रोशनी किस दिशा से सबसे तेज आ रही है।
अरे हाँ,
उस मामूली से कप ने जीव को पहली बार दिशा का ज्ञान दिया। अब वो बता सकता था कि रोशनी दाएं से आ रही है या बाएं से।
ये तो सच में एक आहा पल है, कोई जादू नहीं, ज्यामिति का एक सरल सा नियम
बस।
और ये छोटा सा फायदा ही जिंदा रहने और शिकार होने के बीच का फर्क बन सकता था।
एकदम सही। और यहीं से प्राकृतिक चयन, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, अपना काम शुरू करता है।
ओके।
जिस भी जीव का कप थोड़ा ज्यादा गहरा था, उसे दिशा का अंदाजा थोड़ा और बेहतर मिलता था, तो वो ज्यादा कामयाब रहा।
और पीढ़ी दर पीढ़ी?
पीढ़ी दर पीढ़ी ये कप और गहरा होता गया, इसका मुंह और छोटा होता गया, और आखिरकार ये एक पिन होल कैमरा बन गया।
पिन होल कैमरा?
हाँ, रोशनी एक छोटे से छेद से अंदर आती और पीछे की दीवार पर एक धुंधली सी तस्वीर बनाती। आज भी नॉटिलस नाम के समुद्री जीव में हमें ठीक ऐसी ही आंख देखने को मिलती है।
कमाल है। और वैज्ञानिकों ने अंदाजा भी लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा होगा।
हाँ, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। कंप्यूटर सिमुलेशन के हिसाब से एक सपाट पैच से एक कामचलाउ पिनहोल कैमरा आंख बनने में 5 लाख साल से भी कम का समय लगा होगा।
बस 5 लाख साल? विकास के अरबों सालों के इतिहास में ये तो पलक झपकने जैसा है।
बिल्कुल
ठीक है। तो एक साधारण पिनहोल कैमरा बन गया, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारी और दूसरे जानवरों की जटिल आंखों का क्या, जिनमें लेंस हैं, फोकस करने की क्षमता है?
हाँ, तो यहाँ से प्रकृति मुख्य रूप से दो बड़े रास्तों पर चल पड़ी। दो डिजाइन्स सबसे ज्यादा सफल रहे और आज भी दुनिया पर राज करते हैं।
अच्छा, कौन से दो?
पहला है कैमरा आई। इसका सिद्धांत वही है जो हमारे कैमरों का है, एक लेंस जो रोशनी को इकट्ठा करके एक पर्दे यानी रेटिना पर फोकस करता है।
ताकि एक साफ तस्वीर बन सके।
बिल्कुल, ये हमारी आंखों में है, बाज की आंखों में है, और दिलचस्प बात ये है कि ये ऑक्टोपस में भी है।
एक मिनट, ऑक्टोपस? मुझे लगा था कि वे मुलस्क हैं, जिनका हमसे, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों से कोई लेना देना नहीं।
बहुत दूर के रिश्तेदार हैं।
हमारा और उनका आखिरी साझा पूर्वज शायद एक केंचुए जैसा जीव था, ये कैसे संभव है?
और यही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन,
इसका मतलब है कि जब चुनौती एक जैसी हो, जैसे रोशनी से एक साफ तस्वीर बनाना, तो विकास अक्सर अलग अलग जीवों में एक जैसा समाधान खोज लेता है।
अच्छा।
क्योंकि फिजिक्स के नियम तो सबके लिए एक ही हैं। लेंस का काम करने का तरीका नहीं बदलता, चाहे आप इंसान हो या ऑक्टोपस।
लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑक्टोपस की आंख असल में इंसानी आंख से बेहतर डिजाइन की हुई है।
ये सच है। हमारे रेटिना में नसें प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाओं के ऊपर से गुजरती हैं।
हाँ।
और जहाँ ये सारी नसें इकट्ठा होकर दिमाग तक जाती हैं, वहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है।
हाँ, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है।
ऑक्टोपस की आंख में नसें कोशिकाओं के पीछे से जाती हैं, जो ज्यादा तार्किक डिजाइन है, इसलिए उनकी आंख में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता।
वाह।
मतलब विकास कोई परफेक्ट इंजीनियर नहीं है।
नहीं, वो बस काम चलाऊ चीजों को जोड़कर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कैमरा आई एक कामयाब डिजाइन है, लेकिन ये इकलौता रास्ता नहीं होगा। हमारे स्रोतों में कीड़े मकौड़ों का जिक्र भी था।
बिल्कुल, दूसरा सुपरहिट डिजाइन है कीड़े मकौड़ों का कंपाउंड आई।
कंपाउंड आई,
इसे एक आंख समझने के बजाय हजारों छोटी छोटी आंखों का एक गुच्छा समझिए। हर छोटी इकाई को ओमैटिडियम कहते हैं।
हजारों छोटी आंखें?
हाँ, और हर इकाई दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा देखती है। दिमाग फिर इन हजारों तस्वीरों को जोड़कर एक मोज़ेक जैसी इमेज बनाता है।
तो इसकी तस्वीर की क्वालिटी, मतलब रेजोल्यूशन, हमारी आंखों जैसी नहीं होती होगी?
नहीं, तस्वीर की बारीकी बहुत कम होती है। लेकिन इसके दो बड़े फायदे हैं।
क्या?
एक, इसका देखने का दायरा, मतलब फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़ा होता है, लगभग 360 डिग्री।
ओके।
और दूसरा, ये गति को पकड़ने में माहिर होती है। ये हमसे कई गुना ज्यादा फ्रेम प्रति सेकंड देख सकती है।
अच्छा।
यही वजह है कि जब आप मक्खी को मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो उसे आपका हाथ एक स्लो मोशन फिल्म की तरह आता हुआ दिखता है, और वो आसानी से उड़ जाती है।
तो मतलब दुनिया में बस ये दो ब्लॉकबस्टर डिजाइन ही है, कैमरा और कंपाउंड? या प्रकृति की प्रयोगशाला में कुछ और भी अजीबोगरीब प्रयोग हुए?
अरे, प्रकृति की प्रयोगशाला इन दो डिजाइनों पर ही नहीं रुकी। कुछ प्रयोग तो इतने रचनात्मक हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है।
जैसे कि?
जैसे कि स्कैल्प नाम की सीप को लीजिए। उसके शरीर के किनारे पर दर्जनों नीली आंखें होती हैं।
सीप की आंखें? ये तो मैंने पहली बार सुना है।
और ये कोई साधारण आंखें नहीं है, इनमें लेंस नहीं होता।
लेंस नहीं होता? तो फिर?
इनकी आंखों में एक आईना होता है, एक दर्पण, जो रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप काम करता है।
आईने वाली आंख, मतलब प्रकृति ने लेंस के बजाय ऑप्टिक्स का दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लिया। कमाल है। और क्या है?
एक और मेरा पसंदीदा उदाहरण है जंपिंग स्पाइडर।
जंपिंग स्पाइडर,
उसकी 8 आंखें होती हैं, लेकिन सामने वाली 2 मुख्य आंखें छोटी दूरबीन की तरह है। पर कमाल की बात यह है कि वो अपनी इन आंखों के लेंस को नहीं हिला सकती।
तो फिर वो अलग अलग चीजों पर फोकस कैसे करती है?
वो कुछ ऐसा करती है जो और भी शानदार है। वो अपने लेंस के पीछे अपने रेटिना को ही घुमाती है।
क्या? रेटिना को घुमाती है?
हाँ, सोचिए, वो किसी भी दृश्य को एक स्कैनर की तरह लाइन दर लाइन स्कैन करती है, और फिर अपने छोटे से दिमाग में उन टुकड़ों को जोड़कर एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाती है।
ये तो जबरदस्त है। यानी उसके दिमाग में एक बहुत शक्तिशाली इमेज प्रोसेसर लगा हुआ है।
बिल्कुल।
ये सब तो देखने के अलग अलग तरीके हुए, लेकिन ऐसी चीजों को देखने के बारे में क्या जो हम इंसान देख ही नहीं सकते?
इसका सबसे शानदार और शायद सबसे जटिल उदाहरण है मैंटिस श्रिम्प।
मैंटिस श्रिम्प
शायद धरती पर सबसे जटिल आंखें इसी की हैं, जहां हम इंसान 3 तरह की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं, मतलब कोन सेल्स, से काम चलाते हैं, लाल, हरे और नीले के लिए।
हाँ, RGB।
और इन्हीं 3 से हम लाखों रंग बना लेते हैं।
सही है।
ठीक, अब मैंटिस श्रिम्प के पास 3 नहीं बल्कि 12 से 16 तरह के कलर रिसेप्टर होते हैं।
क्या, 16? हम तो 3 में पूरी दुनिया देख लेते हैं।
हाँ।
इसका मतलब है कि एक मैंटिस श्रिम्प जब किसी कोरल रीफ को देखता होगा, तो उसे ऐसे रंग और पैटर्न नजर आते होंगे जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
हमारी रंग बिरंगी दुनिया उसके लिए शायद फीकी और बोरिंग हो।
बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो ध्रुवीकृत प्रकाश पोलराइज्ड लाइट भी देख सकता है, जिसे हम सिर्फ खास चश्मों से देख पाते हैं।
तो उसकी दुनिया कैसी दिखती होगी, ये हमारी समझ से पूरी तरह बाहर है।
पूरी तरह?
ठीक है, तो हमने देखा कि आंखें 40 से 60 बार अलग अलग विकसित हुईं। हमारे पास कैमरा आंख है, कंपाउंड आंख है, आईने वाली आंख है, स्कैन करने वाली आंख है। ये सब बिल्कुल अलग रास्ते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें कोई आपसी कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाले जेनेटिक कनेक्शन का जिक्र था।
हाँ, ये इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, और इसका जवाब हमें जेनेटिक्स से मिला।
जेनेटिक्स है?
हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया कि एक मास्टर कंट्रोल जीन है जिसका नाम है PAX6।
PAX6?
ये जीन एक स्विच की तरह काम करता है। इसका काम आंख बनाना नहीं है, बल्कि ये शरीर के किसी हिस्से को सिर्फ ये आदेश देता है, यहाँ एक आंख बनाओ।
एक मास्टर स्विच? तो ये जीन क्या सिर्फ इंसानों में मिलता है?
नहीं, और यही तो असली चमत्कार है। ये जीन कीड़े मकोड़ों से लेकर इंसानों तक बहुत अलग अलग जानवरों में पाया जाता है।
सब में?
हाँ, ये इतना पुराना और बुनियादी है, वैज्ञानिकों ने एक मशहूर प्रयोग किया। उन्होंने एक चूहे का PAX6 जीन लिया और उसे एक फल मक्खी के भ्रूण में डाल दिया।
चूहे का जीन मक्खी में, इसका नतीजा क्या हुआ होगा?
नतीजा दिमाग हिला देने वाला था। उस मक्खी के शरीर पर जहाँ भी वो जीन डाला गया, जैसे कि पैर पर या पंख पर,
हाँ,
वहाँ एक अतिरिक्त आंख उगाई।
क्या?
और वो चूहे की कैमरा आंख नहीं थी, वो मक्खी की अपनी कंपाउंड आंख थी।
अविश्वसनीय, ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। मतलब मक्खी के जेनेटिक्स में कंपाउंड आंख बनाने की सारी जानकारी पहले से मौजूद थी।
हाँ,
चूहे के जीन ने तो बस जाके एक स्विच ऑन कर दिया और कहा जो भी तुम्हारे पास है उसे यहाँ बना दो।
बिल्कुल, ये प्रकृति के प्लग एंड प्ले सिस्टम जैसा है। इसे डीप होमोलॉजी कहते हैं।
डीप होमोलॉजी?
सोचिए कि PAX6 जीन एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया एक ही आदेश है, यहाँ एक इमारत बनाओ। अब वो कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली में है तो शायद ईंट और सीमेंट इस्तेमाल करेगा, और अगर जापान में है तो लकड़ी और कागज। आदेश एक ही था पर नतीजा बिल्कुल अलग।
न्यूव का पत्थर एक ही है लेकिन इमारतें अलग अलग हैं।
एकदम सही,
ये तो कमाल का कनेक्शन है। ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अंतिम विचार की ओर ले जाता है। अगर देखने के इतने सारे तरीके हैं और देखना असल में दिमाग द्वारा सिग्नल की व्याख्या करना है, तो ये हमारी अपनी वास्तविकता की धारणा के बारे में क्या कहता है?
यहाँ एक आकर्षक और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला विचार उभरता है। स्रोत बताते हैं कि कोई एक सच्ची वस्तुनिष्ठ वास्तविकता, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है जिसे हम सब देखते हैं।
कोई एक सच्चाई नहीं है?
नहीं, हर जानवर की आंख और दिमाग भौतिक दुनिया के डेटा से वास्तविकता का एक ऐसा संस्करण बनाते हैं जो उसके जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो।
यानी हमारी दुनिया भी बस एक संस्करण है?
हाँ, हमारी तीन रंगों वाली ठीक ठाक रेजोल्यूशन वाली दुनिया बस एक संस्करण है।
एक वर्जन
जो हमारे पूर्वजों को पेड़ों पर फल खोजने और शिकारियों से बचने में मदद करती थी। मधुमक्खी की दुनिया जिसमें फूलों पर परा बैंगनी पैटर्न दिखते हैं, या मैंटिस श्रिम्प की 16 रंगों वाली दुनिया उनके लिए उतनी ही वास्तविक है जितनी हमारी दुनिया हमारे लिए।
सच है।
कभी कभी मैं सोचती हूँ हम अपनी दुनिया को वास्तविकता कहते हैं, पर शायद हम एक बहुत बड़े सिनेमाघर में बैठे हैं और हमारी आंखें सिर्फ कुछ ही रंगों वाली एक पुरानी फिल्म देख पा रही हैं।
ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी आंखों से कितनी चीजें देखने से चूक रहे हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।